Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वहां जो बहुजन्म कहा है उसी पर यहां संकेत किया शंकराचार्य ने, प्राक पुण्य बहुजन्म समर्जितेना भाग्य उदयेना सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। जिस समय अनेक जन्मों के पुण्य का खजाना, पुण्य का पुण्य राशि, तो यहां उसको पुण्य राशि, पुण्य संचय हुए हुए पुण्य समूह को अचल माने पहाड़ की उपमा दी। तो एक आधा पुण्य से तुमको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी भाई, पहाड़ ही चाहिए, पुण्य की राशि चाहिए, राशि है। पोखरा में हिमालय, एक हिमालय का नाम है अन्नपूर्णा। जब तक कहीं जमीन में अन्नों का ढेर लगाते हो ना, कैसा दिखता है वो अन्न का ढेर? पहाड़ की तरह दिखता है कि नहीं? ऊंचा एक पहाड़ और चोटी, पहाड़ की चोटी की तरह दिखता है वो, पर्वत छोटा मोटा पर्वत की तरह दिखता है। इसलिए पोखरा में एक पर्वत हिमालय है, ठीक उसी अन्न का जो रास, बहुत अन्न इकट्ठा करते हैं तो वहां जैसा रास बनता है उसी तरह दृश्य दिखता है, इसलिए उसका नाम कर दिया वहां अन्नपूर्णा हिमालय। हिमालय का नाम है अन्नपूर्णा। एक हिमालय फिश टेल, माछा पूछ रहे मछली के पूंछ की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम ही फिश टेल रख दिया। ये पोखरा में जाओगे तो हिमालय दिखेंगे, फिश टेल माछा पूछ रहे अन्नपूर्णा। तो उसी तरह यह पुण्य का पहाड़ खड़ा होना चाहिए। प्राक पुण्याचलम चला मार्गदर्शित, मार्गदर्शित का अर्थ होता है अनेक जन्मों के पुण्य से तब मार्ग दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं, आपके अंग्रेजी भाषा में गाइड मिलते हैं है? और उसी को हमारी भाषा में कहना हो तो हम कहेंगे गुरु कहेंगे मार्गदर्शी। हमारा मोहनीश बोलते हैं गूगल गुरु के पास जाओ। संसार के ज्ञान प्राप्त करनी हो, भौतिक ज्ञान प्राप्त करनी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो और कहां जाओ, तो बोले गूगल गुरु के पास जाओ है? कल एक श्लोक का हमारे याद आ गया था, कल की परसों शाम को शंकराचार्य जी का एक श्लोक हमको याद आ गया, हम गुनगुनाने लगे। तो मोहनीश ने पूछा गुरुजी ये श्लोक कहां का है, इसका अर्थ क्या है? तो श्लोक ये था, तद यात्रया व्यापकता हताते ध्यानेन चेतो परता हताते स्तुत्या नया वाक् परता हताते क्षमस्व शंभो त्रिविधा अपराधम। हे शिवा, हे शंभो, तीन प्रकार का अपराध मेरे से हो चुका है और उस तीन प्रकार के अपराध ऐसे अपराध हैं कि वह उसका प्रायश्चित कुछ भी नहीं है। आप क्षमा करोगे तभी वह क्षम्य होगा, अन्यथा कृष्ण चांद्रायणी से भी वह प्रायश्चित होने वाला नहीं है वो अपराध। क्या अपराध किया तुमने भाई? शंकराचार्य जी कहते हैं मैंने तीन अपराध बड़ा भयंकर किया, वो आप ही क्षमा कर सकते हैं, अन्यथा उस अपराध का कोई भी प्रायश्चित नहीं। तद यात्रया व्यापकता हताते, मैं ये जानता हुआ कि आप सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, सारे श्रुति यही कह रही है, सब गुरु यही कह रहे हैं, महापुरुष लोग यही कह रहे हैं, इसके बावजूद भी मैंने आपके दर्शन करने के लिए काशी की यात्रा की, केदार की यात्रा की, और मैं इस बात को भूल गया कि आप सर्वव्यापक हैं। मुझे लगा आप खाली केदार में, तो केदार में किस लिए गए बोलो, मरने के लिए गए कि दर्शन करने के लिए गए थे? लेकिन मर क्यों गए? वो जो अपराध किया था ना, उसे एक अपराध का फल भोग रहे हैं। कौन सा अपराध भाई? परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए उनको परिच्छिन्न बना दिया, एक जगह है केदार में है, ये मानकर उनकी सर्वव्यापकता को खंडित कर दिया। समझ गए कि नहीं? शंकराचार्य जी क्या कहते, मैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए केदारनाथ चला गया, इससे क्या सिद्ध हुआ? आपकी व्यापकता को खंडित कर दिया। सब जगह होते हुए आपको व्यापकता को टुकड़ों में बांट दिया, एक देशीय मान लिया, केदार में है। अरे भाई तुम जहां हो वहां नहीं है क्या? और आपके दर्शन करने के लिए मैं काशी चला गया। ले जी, सर्वव्यापक होते हुए मैं एक देशीय बना दिया आपको, तो यही तो मेरा, मेरे द्वारा आपके प्रति अपराध है। ये मैंने आपके खंडित कर दिया, परिचिन्न कर दिया। तो यात्राया, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं जगह जगह जो यात्रा की, उस यात्रा से क्या सिद्ध हुआ? बोले मुझे कुछ पुण्य मिला कि नहीं मिला ये मैं नहीं जानता हूं, आपकी व्यापकता को खंडित कर दिया है, वो मेरे द्वारा ये बड़ा भारी अपराध हुआ। ध्याने न चेतो परता हताते, मैं बैठकर जब ध्यान करने लगता हूं आपका, तो उस समय मैं इस बात को भूल जाता हूं कि आप मन और बुद्धि चित्त से परे हैं, इस बात को मैं भूल जाता हूं। और मन बुद्धि चित्त आदि से परे तत्व को मैं मन के अंदर लाना चाहता हूं, और चित्त के अंदर, हृदय के अंदर मैं लाता हूं। तो क्या हुआ? मन बुद्धि परे तत्व का मैंने खंडित कर दिया, खंडित है। जैसे बाहर खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी को, उसको वहां से पकड़ के लाकर एक छोटे से पिंजड़ों में बंद कर दो, और ये समझदारी है कि अपराध है? बोलो, तुम्हारे लिए तो मनोरंजन का विषय हो सकता है, हरे मिर्ची खिला खिला के उस सोगा को, राम बोलो मिट्ठू मियां, और हरी मिर्ची खाने दो, राम बोलो मिट्ठू मियां, बोलो हरे राम, बेचारा अब वो खा क्या करे, लाचार है, उड़ तो पाता नहीं है, और हरे राम नहीं बोलेगा तो खाने नहीं देगा, बोल हरे राम, तो हरे राम बोलता है वो, राम बोलो, बोले राम, नहीं बोलेगा तो खाने नहीं देंगे, बेचारा उसकी मनस्थिति देखो, उस पक्षी की मनस्थिति तो देखो, कहां अनंत आकाश में उड़ रहा था, कहां तुमने उसको पकड़ के पिंजड़े में बंद कर दिया, कहां वो रुचि रुचि का खाना खोज खोज कर खाता था, कहां तुमने हरी मिर्ची लाल को मिर्ची खिला दी, और फिर जबरदस्ती कह दिया राम बोलो, बेचारा उसके मन की अवस्था देखो, कितनी पीड़ा होती होगी उस पक्षी की। ठीक यही अवस्था में, यही अपराध मैं कर रहा हूं। आप मन बुद्धि चित्त से परे होते हुए, अनंत अनंत सर्वव्यापक होते हुए भी मैंने ध्यान के माध्यम से आपको पकड़ के अपने चित्त में बंद कर दी, ये अपराध हुआ कि नहीं बोलो? ये सिवा अपराध नहीं है, मेरे मन बुद्धि का विषय नहीं है, परे का विषय है। अरे वही निश्चय करके बैठ जाओ, तो ध्यान करके जबरदस्ती मेरे हृदय में आ जा, आ जाओ, आ ला के बंद कर दिया। उद्धव जी हृदय में लाकर बंद करने की बात करते हैं, और ब्रजवाला हैं हृदय में जो बंद था उसके निकालने की बात करते हैं, जमुना के किनारे बैठकर ब्रजवालाएं क्या कर रही थी? ध्यान कर रहे, किस लिए? ये किसका ध्यान कर रहे हो? अरे ध्यान नहीं कर रहे, पर क्या कर रहे हो? बोले जो कलुआ यहां अंदर घुस गया उसको निकाल रही है, वो निकलता ही नहीं है, वो ऐसा जबरा है, आके बैठ गया और निकलता ही नहीं। वो निकले तो फिर हम घर गृहस्थी का काम करें, वो यहां बैठा हुआ है, हमारे घर गृहस्थी का काम सब चौपट कर दिया है। तो वो निकालने के लिए प्रयत्न कर रही है और हम लाके उसको बंद करने के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारे पास आके हर व्यक्ति कहते हैं महाराज ध्यान नहीं लगता। भाई किसका ध्यान करना चाहते हो? बोले परमात्मा का। अरे वो कहां से ध्यान लगेगा? वो तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मन से, बुद्धि से परे है, तो मन के अंदर आएगा कैसे वो? फिर भी उसको जबरदस्ती मन में लाना चाहते हो तो आता तो है लेकिन खुशी से नहीं आता। हो आना पड़ता है इसलिए तुम्हारे चित्त में आ जाता है। बहुत हट करते हो तो आना पड़ता है इसलिए आ जाता है, लेकिन वो प्रसन्नता से नहीं आता है। चित्त से परे का है, कैसे चित्त में आएगा? खुले आकाश में उड़ते हुए पक्षी तुम्हारे छोटे से पिंजरे में, वो अपने आप आएगा? पिंजरा खोल के कहो आ जा आ जा आ जा, कोई नहीं आने वाला है। उसको धोखा देकर पकड़ के लाके पिंजरे बंद करो तो बेचारा बंद होना पड़ता है। तो ध्यान से चित्त में परमात्मा को लाने का कोशिश करना, ये परमात्मा के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा जरूर होगा। पक्षी को पकड़ेंगे तो पक्षी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिसने पक्षी को पकड़ के पिंजरे में डाल लिया उसके लिए तो फिर आनंद है। हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, बच्चे क्या मस्त आनंद मनाते हैं, पकड़ लिया पकड़ लिया। ये दूसरा अपराध है। हाँ तद यात्राया व्यापकता हताते ध्यान न चेत परता हताते स्तुत्या नया बाप परता हताते। मैं आपकी स्तुति करने बैठ गया, आपकी प्रार्थना करने बैठ गया, स्तुति करने बैठ गया। महिम ना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी अतीता पंथा नाम तवच महिमा बांग मनसयो जानते हुए भी। हे शिवा आपकी महिमा मेरे मन और वाणी से परे है। मेरे मन वाणी का विषय आपकी महिमा नहीं है, आपका महत्व नहीं है। अतीत पंथा नाम मन वाणी जहां पहुंचते हैं वहां से भी परे है। अपरंपार आपकी महिमा का मैं क्या गान करूं? कह भी रहे हैं और फिर स्तुति कर भी रहे हैं। वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, कह भी रहे हैं फिर भी स्तुति किए जा रहे हैं। तो क्या हुआ महाराज? बोले ये तीसरा अपराध हो। जो वाणी का विषय नहीं उसको वाणी के अंदर लाकर उच्छिष्ट कर देना, जूठा कर देना। मुख के अंदर जो आया वो जूठा होगा कि नहीं बोलो? मुख के अंदर जो आएगा वो जूठा होगा कि नहीं? तो परमात्मा को मुख के अंदर लाना चाहिए। वाणी से परे है लेकिन वाणी के अंदर ला रहे हैं, ये तीसरा अपराध है। अब ये तभी ये तीन प्रकार का जो अपराध मेरे से हो गया है, मैं प्रतिदिन स्तुति करता हूं और वाणी से परे होते हुए भी वाणी से स्तुति गान करता हूं, ये अपराध। चित्त से परे होते हुए भी प्रतिदिन ध्यान करता हूं, ये दूसरा अपराध है। सर्वव्यापक होते हुए भी मैं तीर्थ यात्रा में भगवान केदार में है, शिवजी काशी में है, शिव जी करते हुए कभी काशी जाता हूं कभी केदार जाता हूं, ये अपराध। क्षमस्व संभव त्रिविध अपराध, शंकराचार्य जी कहते हैं ये तीनों प्रकार के अपराध आप क्षमा करोगे तभी ये क्षम्य होंगे, अन्यथा ये क्षम्य नहीं होंगे। अब ये बहुत ऊंची प्रसंग, ऊंचा प्रसंग है। हा तो मोहनीश ने पूछा कि कहां का श्लोक है स्वामी जी? और अच्छा श्लोक है भाई, क्योंकि ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, तुम्हारे हमारे जैसे कच्चे घड़े की अवस्था नहीं है ये। वो तो घड़ा अच्छी तरह पका हुआ हो ना, उसी की अवस्था है ये। हम कच्चे तो इसी में लगे हैं बेचारे, कभी स्तुति करते हैं, कभी तीर्थ यात्रा करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गान करते हैं। क्योंकि हमारी वो समझदारी नहीं है कि वह सर्वव्यापक है इसलिए तीर्थ यात्रा करना बेकार है, हमारी उतनी समझदारी नहीं है। तो हमने कहा पता नहीं शंकराचार्य जी का स्तोत्र है, आदि गुरु शंकराचार्य, लेकिन कहां का है मुझे पता नहीं। तो महेश ने कहा कि गूगल गुरु से पूछता हूं। वो गया गूगल में ये श्लोक टाइप किया तो पूरे आ गए, पूरा स्तोत्र। एक श्लोक के लिए टाइप किया तो पूरा स्तोत्र आ गया प्रिंट होकर, गूगल गुरु जी ने दे दिया। ले ऐसा एक श्लोक नहीं, कितने श्लोक हैं, ले है ना। तो ये गूगल गुरु जी भी बड़े विचित्र हैं आजकल। तो प्रसंग चल रहा था, नारद जी ने कहा शरद कुमारों को देखते ही, भाग्योदये न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविदाय ही तदोदयते विवेक। तब सत्संग की प्राप्ति होती है। कब? बोले अनेक जन्मों के जो पुण्य के पहाड़ तैयार होता है तब। पुण्य की खेती से नहीं, पुण्य के पहाड़। इतना पुण्य हो कि मान लो कि एक पहाड़ ही हो गया, तो क्योंकि चंद्रमा हमेशा पहाड़ के चोटी से उदित होते हैं, इसी तरह भगवान शिव पुण्य के पहाड़ जो होगा तैयार होगा तभी पहाड़ में रहेंगे, प्रकट होंगे। चंद्रमा कहां से प्रकट हुआ? पहाड़ की चोटी से। भगवान शिव कहां रहते हैं? पहाड़ की चोटी, कैलाश पर्वत। कौन से कैलाश पर्वत? बोले पुण्य का पर्वत ही है। अब इतना पहाड़ की जैसे पुण्य को बनाने के लिए कोई एक जन्म के पुण्य से थोड़ी पहाड़ बनेगा, पुण्य का पहाड़। तो प्राकर्म, कई जन्मों के पुण्य परिपाक होगा पहाड़ की तरह, तब जाकर हाँ मार्गदर्शिता। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, संसार में दो मार्ग हैं। श्रेय मार्ग का दर्शन कराने के लिए, माने निर्देशन करने के लिए भगवान शिव उस पहाड़ में प्रकट होते हैं। सुधा मूर्ति, सोम मूर्ति। सुधा मूर्ति माने सोम मूर्ति। सोम अर्थात उमा सहित शिव प्रकट होंगे, सोम मूर्ति। सोम सुधा मूर्ति, या सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, ज्ञान मूर्ति। या ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या हुआ? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का अर्थ हो गया ज्ञान मूर्ति, क्योंकि ज्ञान ही वेदांत में अमृत है। ज्ञानामृतम भोजनम है, ज्ञानामृतम भोजनम। भर्तृहरि का एक श्लोक है, वो मुझे बहुत प्रिय है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति चिरम गेहिनी, सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी, भ्राता मन संयम सैया भूमि तले दिशो विवसनम, ज्ञानामृतम भोजनम, एते यस्य कुटुंबिनो बद सखे कस्मात् भयम् योगिनः। हे सखे, हे मित्र, जिसका ऐसा उत्तम कुटुंब हो, परिवार हो, उसको ये संसार में फिर किस बात का भय, किस से भय, क्या डर होगा? कैसा कुटुंब? धैर्यम यस्य पिता, उसका पिता कौन है? धैर्य ही उसके पिता है भाई। प्रेम कुटीर में हम पहले कथा करते थे, हो पहले नियम था हमारा, मई महीना प्रेम कुटीर, जून महीना प्रेमपुरी। ये जून प्रेमपुरी का तो बहुत पुराना मेरा हुआ है, आज का नहीं है, 2500 वर्ष हो चुका है। पहले मैं प्रेम कुटीर करता था, फिर प्रेम कुटीर के बाद जून में मई में प्रेम कुटीर करता था। तो अभी तो हो गया प्रेम कुटीर नहीं गए, कम से कम में 15-16 वर्ष हो गए, छोड़ दिया। और तब से प्रेम कुटीर छूटा, जब से हम नेपाल रहने लग गए, तो वही कार्य अपना कार्य क्षेत्र हो गया, उधर प्रचार प्रसार। इंडिया के सब क्षेत्र बंद हो गए, केवल प्रेमपुरी अभी चल रहा है। अब भगवान से प्रार्थना करते कब तक चलेगा, कोशिश कर रहे कि बंद न हो, चलता रहे। तभी आ ही रहे, प्रेमपुरी का प्रेम बहुत ज्यादा है इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आ रहे हैं। तो प्रेम कुटीर में हम कथा करते थे, तो एक सज्जन आके कहने लगे, महाराज आपके परिवार है कि नहीं? फट से हमसे पूछ लिया उसने, आपके परिवार है कि नहीं, माता पिता हैं कि नहीं? बोले हाँ। माता पिता हैं? बोले हाँ। और आपने शादी किया है कि नहीं? बोले किया। पत्नी है? बोले हाँ पत्नी भी है। और बाल बच्चे? बोले बाल बच्चे भी है, भाई बंधु है। कहाँ रहते हैं? बोले यही रहते, मैं जहां रहता हूं। पहले तो उसको विश्वास हो गया था, अब की बार विश्वास नहीं हुआ। ये सब माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे कहां रहते हैं पूछा उसने। उन्होंने कहा मैं जहां रहता हूं वहीं रहते हैं, साथ ही रहते हैं। बोले बम्बई रहते हैं? बोले बम्बई नहीं, प्रेम कुटीर में रहते हैं। तब उसको विश्वास हट गया कि स्वामी जी गप कर रहे हैं। पहले तक तो उसको विश्वास हो गया कि होगा, सब कुटुंब होंगे जैसे सभी का होते हैं। बोले यही हमारा था। हमने कहा तुझे दर्शन करना है मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का करना है? बोले संभव है महाराज, दर्शन कराओगे? बोले हाँ कर ले, देख ले। ये तो यही श्लोक बोला मैंने, धैर्यम यस्य पिता, मेरे पिता का नाम है धैर्य। धैर्य जीवन में धीरता, धैर्यता। यदि अपना जीवन ही धैर्य खत्म हो गया है तो बाप क्या करेगा उसके लिए? अपने में साहस नहीं है तो बाप क्या करेगा? अपने जीवन का जो धैर्यता है वही पिता है। क्षमा च जननी, अपने हृदय में जो सब प्राणी मात्र के गलती तो करते हैं सभी, तुम भी गलती करते हो, हम भी गलती करते हैं। गलती न करना जीव के लिए बड़ा मुश्किल है, गलती करना जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। और तुम कहते हो कि गलती किया, गलती किया, बच्चों को डांटते रहते हो, पीटते रहते हो। गलती करना बच्चों के नहीं, बूढ़ों का भी जन्मसिद्ध अधिकार है। जीवात्मा गलती करेगा, गलती नहीं करेगा तो जीवात्मा ही नहीं होगा। इसलिए किसी ने कहा आ गई थी शिकायत लबों पे, मगर करते किससे, करना बेकार था। दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, हार कर बैठते तो बैठना बेकार था। तो लबों पर शिकायत तो आएगी, लेकिन तुम भी तो गलती करते हो ना, उसी से तुम शिकायत करो। तुम शिकायत उसी से करो जो कभी गलती नहीं करता है, और जिससे तुम शिकायत कर रहे हो वही गलती कर रहा है। और तुम खुद हजार गलती करते हो तो दूसरे की क्या शिकायत करोगे? तब इस अवस्था में क्या करना चाहिए महाराज? क्षमा, तुमने भी कल गलती की थी, हमने भी कल गलती की थी, और जब हमारी गलती सार्वजनिक हुई तो हम मन में यही चाहते हैं कि क्षमा कर दे तो अच्छा है। बोलो तुम लोग ये चाहते हो कि नहीं? तुम गलती करो और वो गलती उजागर हो, है? ये सबको पता चल गया कि इसने गलती की, तो उस समय तुम्हारी मनस्थिति क्या होती है?